हरि ओम। पूज्य प्रेमपुर जी महाराज, परम पूज्य हनुमान जी महाराज एवं संत वृद्ध सोमदत्त जी और आप सभी को वंदन करते हुए, आज एक विशेष दिवस पतिवर्ष हम मनाते हैं। पतिवर्ष हम मनाते हैं, मगर संन्यास का उदय कब हो, गृहस्थ वेश में हम लोग हैं, मगर जो रंग में हम रंगे हुए हैं प्रेमपुरी के, तो संन्यास का उदय कहीं न कहीं हमारे अंदर है। और ईश्वर करे कि सालों साल तक यह जो संन्यास का उदय धीरे धीरे कुछ रंग लाए और जीवन में हमारा और अन्य का भी परिवर्तन कर सके, हमारे मित्र, हमारे कुटुंब, हमारे राष्ट्र, हरेक का कल्याण इसमें है कि संन्यास का रंग कहीं न कहीं हमारे में छटा हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आज के ये पवित्र दिवस पर, क्योंकि जो पूज्य संत लोग यहां हमारे बीच में विराजमान है, बहुत जिस रंग में रंगे हैं, मेरे ख्याल से जो आज संचालन करने वाले सोमदत्त जी वह बहुत करीब है, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद उनको भी हम इसी रंग में देखें। तो यह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और प्रथम मैं हमारे वयस्क जो सत्संगी एवं जो हमारे ट्रस्टी थे ऐसे मधुसूदन जी चिजिलवाला को विनती करूंगा कि आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम का प्रारंभ हो। तत्पश्चात हमारे ट्रेजरर ट्रस्टी मधुसूदन जी झुंझुनवाला अपने भाव व्यक्त करेंगे। तत्पश्चात पूरा संचालन पूज्य सोमदत्त जी महाराज करेंगे। अध्यक्ष स्थान पर परम पूज्य महामंडलेश्वर मोहनानंदी जी महाराज को विनती की है और उन्होंने स्थान लिया है। सभी संतों को वंदन करते हुए हरिओम।
स्वामी महाराज अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम, सब संतों के चरणों में प्रणाम। हमको एक बड़ा लाभ होता है कि जब भी महाराज जी का कोई भी प्रसंग यहां हो तो सोमदत्त जी हाजिर रहते हैं, तो ये भी हमारा बड़ा लाभ है। अब महाराज जी के बाद बदलाने में क्या बात है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब व्हाट महात्मा जी स्वामी जी महाराज वाज। एनीवे, हम तो यहां सत्संग के लिए कई सालों से यहां प्रेमपुरी में आते हो, तो आते ही लिफ्ट में बैठ के बाहर निकलो और महाराज जी के वाणी सुनाने को मिलते हैं। अभी तक 365 दिन में महाराज जी के वाणी हमको सुनने न मिले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और सत्संग के पीछे महाराज जी क्या जे बड़ी कृपा रही मुंबई पर और हमारा प्रेमपुरी अध्यात्म भवन पर। महाराज जी तो करीब करीब 5-6 महीना मुंबई में रहते थे और महाराज जी का सत्संग हमको सुनने के लिए मिलता रहा। अब सवाल है कि सत्संग न मिले तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान की असीम कृपा से हमें संत महात्मा मिलते हैं और संत महात्मा मिले हैं तो हमारा सत्संग तो पक्का हो गया है। ऐसा हमारे यहां महाराज जी का शरीर छोड़े तो कितना समय हो गया, फिर भी कभी भी कोई ऐसा दिल लिया है कि हमको महाराज जी की वाणी सुनने को न मिले हो। और महाराज जी का लिटरेचर की मामले में क्या मैं क्या बताऊं, घर में बैठ के भी सुन सकते हो, और गीता हो कि वेदांत हो कि उपनिषद हो, महाराज जी ने कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं लिया हो कि जिसमें महाराज जी ने अपना प्रवचन नहीं किया हो, वैसे संत महात्मा के चरणों में बैठ के हमें यहां लाभ मिलता है, तो किसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूं, महाराज जी को प्रणाम करता हूं।
नारायण 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 नारायण। मंचस्थ सभी संतों को, महापुरुषों को प्रणाम, मेरे सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए एक विशेष महत्व का दिन है। हमें अपने आप से पूछना है कि महाराज श्री को इतना याद क्यों करते हैं। इतना याद हम अपने परिजनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने संबंधियों को, अपने प्रियजनों को भी इतना याद नहीं करते जितना याद हम महाराज श्री को क्यों करते हैं, इसके बारे में हमें विचार करना है। हालांकि हमें शरीर अपने माता पिता से मिला है, प्रेम हमें बंधु बांधवों से मिला है, लेकिन जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन में कैसे शांति प्राप्त हो, जैसे ईश्वर की अनुभूति जीवन में कैसे हो, ये मिला है हमें महाराज श्री से। महाराज श्री ने हमें क्या नहीं दिया, उनसे हमें क्या नहीं मिला, हम इसीलिए याद करते हैं कि उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, एक ऐसी भावना है जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे मन में उनके प्रति एक अपार श्रद्धा है। यहां पर हम उनको सुनते हैं रोज प्रातः 6:15 बजे से उनकी वाणी सुनते हैं। उनकी वाणी में एक ऐसी प्रेरणा है, एक ऐसी दिशा है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि जीवन इस संघर्ष के बीच में कैसे जीना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी थी कि जीवन संघर्ष है, तुम्हें लड़ना है, और लड़ना है शांति के साथ, एक ध्येय के साथ कि हमें जीतना है। मैं अधिक क्या कहूं, गीता में भगवान ने कहा है, ये है स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाभाहो सुखम बंधा प्रमुचते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं। मैं तो यहां सुनने आया हूं, मैं तो संतों के श्रीमुख से उनका आशीर्वाद चाहता हूं। जय श्री कृष्ण।
पूज्य श्री श्री आज्ञा अध्यक्ष सत्यासीन महामंडलेश्वर जी महाराज की आज्ञा से मैं आप सबका इस संन्यास जयंती महोत्सव में स्वागत करता हूं। ये संन्यास जयंती वृंदावन में भी मनाई जा रही है, आज यहां प्रेमपुरी जी में भी मना रहे हैं हम लोग, प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट के सहयोग से आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज श्री ने यहां पे इस समारोह की अध्यक्षता स्वीकार करके हम लोगों को धन्य किया है और हम लोग आपका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी श्री महामंडलेश्वर जी हरिहरन जी महाराज यहां पे पंचदशी का स्वाध्याय करा रहे हैं, वो भी बड़े अनुग्रह, बड़ी उनकी अनुग्रहता है कि वो हम उनके बीच में उपस्थित हैं। योगानंद जी महाराज परम पूज्य स्वामी श्री भी हमारे मध्य हैं और इन्होंने ही, इनके ही नाम राशि ने जो रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में थे, परमहंस योगानंद जी महाराज, उन्होंने महाराज श्री के चित्त में संन्यास के बीज डाल दिए थे बचपन में ही। महाराज श्री बताते हैं कि 10-12 वर्ष की अवस्था में मुझे ज्ञान हो गया था और गांव में महाराज जी महात्मा आते थे, तो वैष्णव आते थे, वैष्णवाचारी भी आते थे और अनेक अनेक संप्रदाय, गंगा तट है महाराज श्री वहां, तो वहां पे जब गुजरते थे वहां से यात्रा होती थी तो लोग आ जाते थे। तो कोई स्वपाकी था, कोई कैसे बनाता था, किसी के बहुत नियम थे, कोई परिधि में आ नहीं सकता था, कोई छू नहीं सकता था। महाराज श्री मौज लेते हैं, कहते हैं कि जब कोई सन्यासी महात्मा आता था तो वो उसके लिए फिर कढ़ाई घर में चढ़ती थी और खूब छनन मनन बसना था। महाराज जी कहते हैं कि हमारा मन करता था कि अगर मैं महात्मा बनूंगा तो ये गेरुए वस्त्र वाला बनूंगा, हमको कुछ न करना पड़े और सब बनी बनाई मिलती रहे। ये महाराज बचपन की बात महाराज श्री संस्मरण में कहीं किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ी है, तो ये किसान पोत के भंडारी बनना एक हमारे यहां कहावत है, यूपी में चलती है, किसान पोत के भंडारी बनना। हुआ क्या कि राजा के यहां रसोई बनी और बहुत अच्छी बनी, तो उन्होंने कहा कि आज जो भी रसोई बनाया है उसको इनाम मिलेगा। तो जितने रसोई वाले थे वो तो ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जिनका कोई मतलब ही नहीं था रसोई में, तो वो लोग भी दौड़ दौड़ कर रसोई में जाएं और वहां जो आटा किसान बोलते ना, आटा गेहूं के आटे को किसान बोलते हैं, तो जो पिसा हुआ है वो किसान, तो उस किसान को लगा लिया आटे को कि हम भी भंडारी हैं। तो ऐसे ही हम भी किसान पोर्ट के भंडारी बन जाते हैं, महाराज जी का कुछ पढ़ लेते हैं और आप लोगों की कृपा, आप लोगों की छाया में बैठ के अपने को समझते हैं। ये तो हमारे हरि भाई ड्रेस वाला बच्चू भाई जी के साथ बाबा जी पूज्य पिता श्री विनोद करते थे कि न संन्यास का छीटा इनके वस्त्रों को, सफेद वस्त्रों को रंगीन कर पाया, न हमारे वस्त्रों को रंगीन कर पाया। ऐसे वो संस्मरण याद आ गया और बच्चू भाई हरि भाई ड्रेस वाला बहुत हंसते थे इस बात को लेकर। ऐसे महाराज जी की हम परिकर में बैठ के महाराज जी को याद कर रहे हैं, उनकी संन्यास परंपरा को याद कर रहे हैं। संन्यास परंपरा तो पहले से रही है, ये घटनाक्रम भी हुआ तब जब महाराज जी जबलपुर में थे और वहां के लोगों ने घेरा कि हम लोग आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा जन्मदिन तो अभी है नहीं और होता नहीं है संन्यास का जन्मोत्सव, संन्यास में जन्म और मृत्यु तो मानी ही नहीं जाती, तो तुम लोग ऐसा करो कि संन्यास, ये ईद थी, एकादशी थी, माघ शुक्ल एकादशी, तो उन्होंने कहा कि संन्यास का तुम लोग उत्सव मनाओ। तो वहां भी प्रश्न उठाया कि संन्यास की जयंती कैसे होती है, संन्यास की तो जयंती हो नहीं सकती, तो कहे बस इसीलिए ही बनाओ, इस प्रश्न को सुलझाने के लिए और संन्यास की परंपरा को लोग याद करते रहें इस बानक को बना के, इसलिए आप लोग बनो। तो ये महाराज श्री का संन्यास स्वामी श्री ब्रह्मेशानंद जी सरस्वती परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में कुंभ मेला में और इसी दिन आज की तिथि पे हुआ था और वो लगभग 74 साल वर्ष बीत गए इस बात को। तो अगर 74वीं जयंती महाराज जी इस ढंग से संन्यास जयंती महाराज जी के प्रति है, तो संन्यास की जयंती नहीं होती और महाराज जी ने संन्यास लिया था इसके कारण ये तिथि हम लोग स्मरण करते हैं और उनके प्रतिरूप संन्यास का प्रतिनिधित्व जो महामना कर रहे हैं, यहां महापुरुष कर रहे हैं, उनके दर्शन का लाभ हमको मिले इस दिन और हम उस परंपरा को, उस महात्म्य को आप श्री लोगों के मुख से सुन के धन्य हों और वो हमको कृतार्थ करे, हमारे जीवन में आवे उतरे, जैसा हमारे मधुसूदन भाई हरि भाई तिजोरी वाला जी बार बार पिताजी का नाम आता है, गिरीश भाई की जगह गिरीश भाई और तिजोरी वाला जी ने जैसे ही अपनी भावना प्रकट की है, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा। आनंद निर्झर करके 13 पुस्तिकाओं का संकलन महाराष्ट्र की अलग अलग संन्यास जयंतियों पे महाराज जी 13 साल के यहां पे प्रवचन हुए जो दिन बनता था, तो उसमें आनंद निर्झर करके पुस्तिका हमारी लीना बहन ने संकलित कर दी। तो संन्यास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना हो और शास्त्रीय पक्ष को लेते हुए व्यावहारिकता के साथ, तो वो आनंद निर्झर पुस्तक आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। उसमें सूत सूत तार तार महर्षि ने अलग कर दिया है कि संन्यास किस चीज का नाम है, तो वर्ण और आश्रम को अलग किया और हम इसी परंपरा में चतुर्थ, ये चतुर्थ बोलना भी गलत है एक तरह से, जो तीन से ऊपर है उसके बारे में बात करते हैं यहां पे, वो चौथा है कि नहीं है इस बारे में नहीं जाते। तो हमारे पूज्य श्री स्वामी योगानंद जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि आपके मुखारविंद से हम कुछ श्रवण करें।
वसुदेव सुतम देवं कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद सत गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर मोहनानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, वंदनीय संत प्रेमी सत्संग प्रेमी मधुसूदन ग्रीस भाई अन्य सत्संगी धर्म प्रेमी धर्मानुरागी। अभी अभी बड़ी सुंदर महाराज के प्रति स्मरण सुन रहे थे। इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर परमात्मा ही महापुरुषों के रूप में अवतार होते हैं। जब हंस के रूप में अवतार लेते हैं तो बहुत सारे जीवों का कल्याण करते हैं, कोई एक नहीं, बहुत सारे जीवों का। उसी श्रृंखला में पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज और पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज मेरे नाम से, ऐसे महापुरुषों इस धरातल पर अवतरित होकर के ज्ञान की गंगा बहाते हैं और भारतीय संस्कृति का उत्थान करते हैं। किस रूप में? हंस रूप में, क्योंकि हंस के रूप में जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो वो नीर छीर विवेकी होते हैं। पूज्य महाराज श्री गृहस्थ जीवन में रहे, ज्यादा समय तक तो नहीं रहे, अभी आप सुन रहे थे, तो गृहस्थ जीवन में रहे फिर भी महाराज जी का मन और बुद्धि आध्यात्म की ओर था। किसी कारणवश गृहस्थ जीवन में पड़ गए, लेकिन बार बार यही सोचते थे, यही विचार करते थे, इस शरीर पाकर कुछ तो करना चाहिए, कुछ भी प्राप्त करना चाहिए। तो महाराज जी का मन अध्यात्म विद्या में, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज अध्यात्म विद्या, और जगह जगह जाकर के धर्म की प्रचार करते थे, भटके हुए व्यक्ति को रास्ते में लगाते थे। जो व्यक्ति भटक जाते हैं उसको रास्ते में लगा देते महाराज जी। इसलिए महाराज जी गीता प्रेस में भी रहे, वहां भी ज्ञान के गंगा बहाते रहे, जहां भी गए जहां भी जाते थे ज्ञान की गंगा बहाते थे, और उस गंगा में जो कोई स्नान करते थे वो धन्य धन्य हो जाते, तृप्त तृप्त हो जाते थे। इसलिए ये जो ज्ञान की गंगा है, इस ज्ञान की गंगा में जो भी स्नान करते हैं उसका अंतःकरण क्या होता है, शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जिसके अंतःकरण शुद्ध हो पवित्र हो तो वही व्यक्ति परमात्मा जर्रे जर्रे में नजर आते हैं, हर व्यक्ति में परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। लेकिन मुख्य है अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि कहाँ होगी, प्रेम पूरी सत्संग में, अन्यथा और कहीं बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अब हाट बाजार में जाओगे तो वहां सौदा होता है, लाभ हानि का, यहां क्या, यहां तो जीवन जीवन की सौदा हो रही है और इसी जीवन से लाभ कमा रहे, ये कम बात है, ये बड़ी विशेषता है। पूर्व जन्मों के संस्कार कारण आप प्रेमपुरी में आए हो और लाभ उठा रहे हो, नहीं तो बंबई में पता नहीं कितने हजार लाखों संख्या में कोई लाभ नहीं उठा पा रहा, बिरले ही लाभ उठाता है। इसलिए आप क्या है, धन्य है, और यहां का ट्रस्टीगण भी धन्य है जो आयोजन करते हैं, धार्मिक धार्मिक उत्सव करते हैं, ये भी धन्य है और आप भी धन्य है। इसलिए महाराज का जन्म ही हुआ था भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। जगह जगह एक बार महाराज जी बिहार चले गए थे, बिहार जाकर के गांव वाले ने जगह नहीं दिया, गांव वाले तो जानते हैं कैसे होते हैं गांव वाले, आधा आधा मूर्ख होते हैं, आधा पागल होते हैं, कोई शरण नहीं दिया, तो बेचारे बिना खाए पिए भटकते रहे भटकते रहे। और किसी ने बता दिया महाराज यहां कोई मिलने जुलने वाला है नहीं, चले जाओ रेलवे स्टेशन में, कोई कृपा करें, कोई दया कर देंगे, आपको भोजन मिल जाएंगे। बेचारा भटकते हुए घूमते हुए आए, तब तक रात्रि में 10 बज गए थे। अब 10 बजे कहाँ खाने पीने, वैसे ही सो गए, और जब सो गए भूखे भी, भूखा व्यक्ति हो तो नींद भी नहीं आती है, वो स्मरण कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। इतने में बालक के रूप में दो आए, बालक के रूप में दो आए, वो कौन था, स्वयं परमात्मा ही थे। तो बालक के रूप में दो आए, कहने लगे बाबा भोजन कर लो, आप बहुत दिनों से भूखे हैं क्या। हाँ महाराज मैं भूखा तो हूँ, भूख तो लगी है, लेकिन तुम आए कहाँ से, कहाँ घर है। कहना ये मत पूछो बाबा, तुम भोजन कर लो। जैसे भोजन किया, महाराज जी के मन में आया चलो देखे थे वो बालक कहाँ से आए, तो बालक जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकला बालक गायब हो गया। देखो कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा भक्तों के प्रति। जो परमात्मा का भक्त है वो क्या है, तो भूखा रह ही नहीं सकता है। भगवान स्वयं भूखे रह जाए लेकिन भक्त को भूखा नहीं रखते, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए। उस वैराग के कारण पूरे भारत में प्रचार के, धर्म के प्रचार के, लेकिन बम्बई के जो बम्बई वासी हैं वो तो धन्य है। महाराज जी यहां 6-6 महीना रह करके धर्म का प्रचार करते थे, किसके लिए, लोगों के कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो गंगा किनारे बैठ करके साधना करते, आराधना करते, बैठ करके जंगल में चले जाते, लेकिन नहीं, आप लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान के गंगा महाराज जी ने बहाया। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम यही विराम लेते हैं। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।
स्वामी श्री ने बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाए। वो घटना बरौत बरियारपुर स्टेशन की है, बिहार में गया से या के आसपास उस स्टेशन के पड़ता है, और खोआ का दो दोना मिला था उस समय, और सुदर्शन सिंह चक्र से साथ में और महाराज श्री थे। कहते हैं कि उस स्टेशन पे कोई रोशनी नहीं थी, पर वो दोनों बच्चे आए तो एकदम स्पष्ट दिखते थे और ऐसा लगता था कि कोई रोशनी उनके शरीर से छिटक रही हो। उसमें हम स्मरण करते हैं उस झांकी का, दिव्य झांकी का, और महाराज श्री ने उड़िया बाबा जी का भी नाम लिया, परमहंस। तो एक यमुनाचार्य जी का ग्रंथ है, उसमें बहुत महर्षि ने उसमें बांधी है, छटा जो बांधी है वो ये बांधी कि जब व्यक्ति पक्ष विपक्ष समझ लेता है और पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है तो पक्षी हो जाता है,
और जब और विवेक का उदय होता है तब वो हंस होता है, उड़ने वाला पक्ष। और हंस में भी परमहंस श्रेष्ठ, और परमहंस के बाद एक श्री परमहंस की कोटि होती है, ये महाराष्ट्र के मुख से हमने सुना है। और श्री परमहंस कोटि में उड़िया बाबाजी महाराज को रखते थे, महाराष्ट्र श्री परमहंस कोटि में, तो उनका भी पुण्य स्मरण करते हुए हम उसी परंपरा में सादर वंदन के साथ महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरन जी को आमंत्रित करते हैं। और देखिए भाई, एक महात्मा के साथ दूसरा महात्मा कैसे आके जुड़ जाता है, क्या अटूट कड़ी होती है। योगानंद जी महाराज, यहां योगानंद जी महाराज, हरिहरानंद जी हमारे करपात्री जी का नाम, क्या क्या पुण्य स्मरण है सब आज। तो हम बहुत बहुत आदर के साथ, बहुत वंदना के साथ अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें, प्रार्थना करते हैं।
हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमः शिवाय सच्चिदानंद भगवान की जय। परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुर जी महाराज के संस्मरणों से निर्मित एवं परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा संवर्धित इस प्रेमपुरी आश्रम के इस सभागार में हम लोग महाराज श्री की संन्यास जयंती महोत्सव में इकट्ठे हुए हैं। ऐसे इस सभा के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री मोहनानंद गिरिजी महाराज तथा परमादरणीय श्री योगानंद जी महाराज सोमदत्त जी तथा समुपस्थित इस आश्रम के प्रन्यासी एवं तत्व जिज्ञासु सज्जनों माताओं बहनों देखिए भारतीय संस्कृति बड़ी ही दिव्य संस्कृति है। दिव्यता यही है कि हमारा जो धर्म है वो वैदिक है, मनुस्मृतिकार ने कहा वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। इसलिए हमारे यहां जो भी कर्तव्य अकर्तव्य का जो बोध है वो हम वेद से ही जान सकते हैं। और ये जो जन्म और मृत्यु की जो श्रृंखला है वो अनादि काल से चली आ रही है। अनादि होते हुए भी आत्मबोध से उसको समाप्त किया जा सकता है। आत्मबोध प्राप्त करने योग्य इस संसार में यदि कोई शरीर है तो वो केवल मानव शरीर है। मानव शरीर में ही यह काम किया जा सकता है। और मानव शरीर को बड़ा ही दुर्लभ और अमूल्य माना गया है। मानव शरीर की एक एक क्षण का सदुपयोग हो, इसलिए हमारे यहां ऐसा उपदेश भी वेदों ने दिया है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगुणसमः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य के लिए जो ये जीवन है वो बहुत ही मूल्यवान है। और संपूर्ण आयुष्य सार्थक हो इसलिए मनुष्य की आयुष्य को और मनुष्य के स्वभाव को चार वर्ग में बांटा हुआ है। ये वैदिक व्यवस्था है। मनुष्य के स्वभाव को चार वर्ण में बांटा गया है और मनुष्य की जो आयुष्य है उनको चार आश्रम में विभक्त किया गया है। और वो इसलिए कि प्रत्येक मनुष्य इस क्रम से आगे बढ़ते हुए आत्मबोध को प्राप्त करे और जन्म मरण से मुक्त हो। ये नहीं कि कोई एक विशेष व्यक्ति ही इसका अधिकारी हो, यद्यपि अधिकार प्राप्त करना प्रयत्न साध्य है, फिर भी दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। वर्ण का विभाजन, गुण के आधार पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम्। ये भगवान के द्वारा कृत है। मनुष्य के स्वभाव को आप देखेंगे तो वो चार ही प्रकार का स्वभाव आप पाएंगे। यदि वर्ण से भी देखा जाए तब भी मनुष्य का बाह्य वर्ण भी चार प्रकार का है और स्वभाव को भी यदि देखा जाए तो स्वभाव भी आप यही चार प्रकार का पाएंगे। सेवा, व्यापार, युद्ध और शांति दांति वगैरह। अब ये जो चार वर्ण है, चारों वर्णों के लिए ऐसी व्यवस्था हमारे यहां वेद में है कि सबसे पहले मनुष्य को अपनी प्रथम अवस्था जो है, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते, उसमें विशेष करके जो त्रैवर्ण है उनको वेदाध्ययन करना चाहिए। वेदाध्ययन काल को ब्रह्मचर्य काल बोलते हैं। यद्यपि मनुष्य जन्म में करने योग्य तो बहुत है, किंतु सब कार्य एक साथ में जैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चारों कार्य ऐसे हैं जो भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, इसलिए उसको चार आश्रम में विभक्त कर दिया गया। ब्रह्मचर्य काल में केवल विद्या अध्ययन और गुरु सेवा यही एक कार्य है, और वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य के लिए जो कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब का बोध प्राप्त करके दूसरी जो अवस्था या आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। वेदाध्ययन करते समय जो जीवन का क्रम समझा है, आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, उस साधन को अध्ययन काल में जो पाया है, जो पथ पाया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, और जो हमारे अंतकरण के ऊपर जो तीन दोष कहे गए हैं शास्त्रों में, मल, विक्षेप और आवरण, उन तीनों दोष को क्रम से निवृत्त करने के लिए जो सबसे पहला मल नाम का जो दोष है उसको निवृत्त करने के लिए गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में हम वेदोक्त निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हैं तो मल नाम का दोष निवृत्त हो जाता है। जिसने गृहस्थ आश्रम का बखूबी पालन किया, निष्काम भाव से यदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया है तो निष्काम कर्म के फलस्वरूप अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है, मल नाम का दोष निवृत्त हो जाता है, तब चांचल्य नाम का जो दोष है, विक्षेप नामक जो दोष है, उस दोष की निवृत्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम में श्रद्धा तप उपासना का अनुष्ठान किया जाता है, और विक्षेप नाम का जो दोष है उसको दूर वानप्रस्थ आश्रम में किया जा सकता है, और इसलिए ही वानप्रस्थ आश्रम है। मल और विक्षेप नाम का जब दोष निवृत्त हो जाता है तब केवल आवरण नाम का जो दोष रह जाता है उस आवरण नाम के दोष को दूर करने के लिए चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए सज्जनों मल और विक्षेप इन दोनों दोषों से व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए होता, वही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की क्रमिक परंपरा है। ये नहीं कि सबको इस क्रम से ही चलना पड़ता है, ब्रह्मचर्य काल से भी यदि कोई चित्त शुद्ध व्यक्ति है तो वो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यद अहरिव विरजित तद प्रव्रजित, जब मन में वैराग्य आए, और वैराग्य तभी आ सकता है जब चित्त में से मल नाम का दोष दूर हो जाता है। और निष्काम कर्म के अनुष्ठान से ही मल नामक दोष निवृत्त होता है और तब जाकर के मुमुक्षु अधिकारी बनता है। इसलिए वर्ण और आश्रम की ये जो परंपरा है वो बड़ी ही दिव्य परंपरा है। हमारा जो वैदिक धर्म है वो उनका मूल ढांचा ही यही है। और श्रम को जिसमें बांट दिया गया है, एक एक करके श्रम करते हुए आगे निकले, जैसे कि कहा कि चतुर्थ आश्रम है संन्यास आश्रम, उसमें जाकर के मनुष्य को चाहिए कि वो वेदांत का श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। जब मनन और निधिध्यासन के साथ वो श्रवण करता है तब श्रवण से श्रोत्रि ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जब तत्वमसी महावाक्य का बोध किया जाता है तब अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की अनुभूति होती है। वो है संन्यास की पराकाष्ठा है। उसके बाद जो आत्मबोध को जो प्राप्त महापुरुष है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तत्त्वमसि महावाक्य के बोध से जब जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाता है, अखंड ब्रह्माकार धी का उदय हो जाता है, उसको कहते हैं संन्यास अवस्था। संन्यास हमारे यहां विद्वत और विविदिषु दो प्रकार का कहा गया। साधन अवस्था में जब किया जाता है तो उसको विविदिषु संन्यास बोलते हैं और बोध हो जाना ही विद्वत संन्यास है। यद्यपि वर्ण और आश्रम की परंपरा के अनुसार जैसे संन्यास के चार प्रकार कहे गए हैं, हंस, परमहंस, कूटीचक और बहुदक, उसमें जो परमहंस कोटि है वो उत्तमोत्तम कोटि मानी गई है, जिसका संन्यास जयंती महोत्सव हम इस समय मना रहे हैं। परमहंस कोटि को प्राप्त स्वामी जी महाराज जिन्होंने यही वैदिक प्रणाली जो हमने बताई उसके अनुसार ही उन्होंने संन्यास ग्रहण करके, संन्यास ग्रहण करने के बाद जो किया जाता है वो सब उन्होंने किया और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि ये जो बोध है, अनुभव है, उस तक वो पहुंचे। और इतना ही नहीं, वो इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद कोई गिरी गुहा कंदरा में जाकर के वो नहीं बैठे। उन्होंने ये जो बंबई जैसे जो शहर है जहां पर आप देखते हैं कि लोग केवल मुंबई में ही कहां, सर्वत्र जो है मनुष्य महामोह और माया से बंधा हुआ है, ऐसे जनमानस के बीच में जाकर के उन्होंने वैदिक संस्कृति का उद्घोष किया, सबको जगाया। और खास करके जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि महाराज जी यहां पर छह छह महीना तक रहते रहे, अपनी अवस्थाओं में निमग्न रह करके, ब्रह्म में निष्ठ रह करके उन्होंने हम सबको ऐसा प्रबोध किया, ऐसा वेदांत का जो प्रबोध किया जिसका हम लोग आज भी पुस्तक के आकार रूप में प्राप्त करते हैं। और जो सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट है वो महाराज जी के द्वारा जो कृत प्रवचन है उन्हीं को वो पुस्तकाकार रूप में आज भी प्रकट करते चले जा रहे हैं। हम ये ना समझे कि महाराज जी इस समय नहीं है, महाराज जी इस समय भी वांग्मय रूप से हमारे सामने उपस्थित ही है। भागवत में कहा गया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने के लिए जब तैयार हो रहे थे, उद्धव जी को कहा कि हम तो अब जा रहे, उद्धव जी कहने लगे कि भगवान आप जाएंगे हमारा क्या होगा, हम किसकी सेवा करेंगे, किसके चरण के दर्शन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं वांग्मय रूप से उपस्थित होगा, तेने यम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे है, मैं वांग्मय रूप में उपस्थित रहूंगा। भागवत है भगवान का जैसे वांग्मय रूप है, हम लोग भागवत का दर्शन करें तो मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। वैसे ही महाराज जी के द्वारा जो उपदिष्ट जो अंश है उसको हम ग्रंथ के रूप में प्राप्त करते हैं तो समझो कि ये महाराज जी का ही वांग्मय रूप है, जिसको हम पढ़ते रहे उन्हीं से ही उसमें जो उपदिष्ट अंशों को देखते रहे और हमारे जीवन को उससे आप्लावित करते रहे। इससे ज्यादा महाराज जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि महाराज जी का दर्शन का सौभाग्य हमको तो नहीं मिला है, किंतु महाराज जी की जो वाणी है उसको हमने सुना है, पढ़ा है, जिसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान ही होगा। और हम यहां हर साल आते हैं तो महाराज जी की जो महिमा है उसके जो प्रवचन है वो भी सुनते हैं, और प्राय इस संन्यास जयंती में भी उपस्थित रहने का मौका भी मिलता है। और आप लोग जो है महाराज जी के प्रवचन से ही आप्लावित भी हो रहे हैं, सुबह में भी आप लोग सुनते हैं, और संन्यास परंपरा के कई एक महापुरुष यहां पर आते हैं जो आप लोगों को शंकर परंपरा का उद्बोध करते हैं, जिससे हम लोग अपने जीवन को आप्लावित कर सके। तो इस तरह से महाराज जी का ये जो संन्यास जयंती महोत्सव है हम आज मना रहे हैं, और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन को गृहस्थ से आगे बढ़ करके वानप्रस्थ, उससे आगे संन्यास और उससे आगे ब्रह्मबोध तक हम लोग भी पहुंचे, क्योंकि संन्यास ब्रह्म ज्ञान का जो है साधन माना गया है। इसलिए ये जो वर्ण और आश्रम की परंपरा के अनुसार हम संन्यास कोटि में पहुंच करके श्रोत्रि ब्रह्मंश गुरु से तत्वमसी महावाक्य का बोध प्राप्त करके हमारे जीवन को कृतार्थ करे, यही हम महाराज श्री के चरणों में संन्यास जयंती के उपलक्ष में हम भावांजलि पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।
बहुत ही सुंदर और पूरा का पूरा क्रम प्रकट कर दिया शास्त्रीय विवेचना से सिंचित परम पूज्य स्वामी श्री ने। सवेरे ये था कि वहां जाएंगे, महामंडलेश्वर जी होंगे, उनके सामने बोलना है तो क्या बल रहेगा। तो निर्बल के बलराम, गुण तुम्हार समझ ही निज दोसा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। तो हमको तो मोहन का भरोसा है, महर्षि के ग्रंथों को दृष्टि अगर डालें तो महाराज जी ने क्या बढ़िया ढंग से सिद्ध किया है कि गीता सन्यासियों का ग्रंथ है। हरिद्वार में महाराज जी गीता पे जब बोल रहे थे तो पूरा का पूरा गीता का सन्यास रूप प्रकट कर दिया।
और उसमें मोक्ष संन्यास योग, हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योग। बोले योग क्या है, तो योग ये है कि जो हमारी वृत्तियां भीतर से बाहर जाती हैं उनको बाहर से भीतर लाओ, वो योग। और भीतर से बाहर जाने का नाम भोग। एक एक लाइन की परिभाषाएं जो जीवन भर याद रह जाएं। सर्वकर्म फलत्याग की बातें महाराज श्री कहते हैं कि गीता का जो कर्म योग है वो संन्यास का विरोध करने वाला नहीं है, संन्यास से अविरोधी कर्मयोग की बात गीता करती है। और गीता का संन्यास कर्म का विरोधी नहीं है। जब हम कुछ किए रहेंगे तब न छोड़ेंगे, तो कुछ छोड़ने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। भोजन बनाने के लिए आग जलानी पड़ेगी, कब बुझानी पड़ेगी? जब आग जली ही नहीं, भोजन बना ही नहीं, तो बुझाएंगे क्या? तो ऐसे करके महर्षि बहुत ही सरल सरल ढंग से उदाहरण देते हुए, और संन्यास की तो बहुत ही मजेदार घटनाएं, महाराज जी से 2 मिनट आज्ञा लेके, 9:30 तक चलना है तो 2 मिनट आज्ञा लेके महाराज जी के संस्मरण सुना देते हैं, 2 छोटे छोटे। एक हाँ, 4 लोग महाराज जी सत्संग करते थे गृहस्थ आश्रम में, सुदर्शन सिंह चक्र, झगड़ू सिंह कानूनगो महाराज श्री स्वयं, और एक थे गणेश प्रसाद रस्तोगी। ये 4 लोग थे, और ये लोग गीता का स्वाध्याय करते थे वहां बैठ के गांव में। कोई किसी की टीका उठाता था, कोई किसी की टीका उठाता था, और एक एक श्लोक पे किसके क्या भाव हैं वो बातें चर्चा चलती रहती थी। भोजन का भी समय नहीं मिलता था, घरों से रसोई बुलाने वाले आ जाते थे, खड़े रहते थे, और इन लोगों का जो रस बनता था, तो ये छोड़ना पड़ता है कि छूट जाता है। बाबा ने, उड़िया बाबा ने कहा है कि तुम छोड़ रहे हो, ये अगर भावना बनी रहेगी तो छूटा क्या? अच्छा, सहज छूट जाए तो कोई अच्छी चीज पकड़ लो तो बुरी चीज छूट जाएगी। तो एक बार विवेक हो गया कि ये संसार में कुछ है नहीं, असार है, तो अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कह दिया चीनी छोड़ दो, थकान ने कहा कि अब जागना छोड़ दो, आराम ने कहा कि नींद छोड़ दो, महाराष्ट्र का है सारा, ऐसी झड़ी लगाई है। तो वो आए गणेश प्रसाद रस्तोगी महाराष्ट्र के पास कि मन तो अब करता नहीं कि रहें गृहस्थी में, करें क्या? महाराज जी ने, उसमें गृहस्थ, महाराज जी ने कहा कि देखो हम लोग गुरु हैं और गुरु घराना है, तो हम तो वो विद्या जानते हैं कि घर 1 मिनट छूट जाए। तो कहा बता दीजिए, तो कहा पक्का ना? तो कहा हाँ पक्का। तो मेहराई ग्राम से धानापुर बाजार, तो धानापुर बाजार से वो आते थे, 2 किलोमीटर का रास्ता है बीच में, बीच में ये हमारे अंतेजों की बस्ती पड़ती है। उन्होंने कहा तुम आज जाके वहां भिक्षा कर लेना, रोटी मांग के खा लेना, और वो गए और वहां बैठ के रोटी खा ली, और आते जाते लोगों ने देखा कि सेठ जी वहां बैठ के रोटी खा रहे हैं। वो जाके घर में बात पहुंच गए। अब ये जब घर पहुंचे तो घर वाले दरवाजे पे डंडा लेके खड़े थे कि घर में मत घुसो। क्यों भाई? तो कहे कि लोगों को पता लग गया कि तुमने अंतेजों के यहां रोटी खा ली, हरिजनों के यहां रोटी खा ली, तो अब बच्चों के ब्याह अच्छे घरों में नहीं होंगे अगर तुम घर में रहोगे। तो वहां से वो नाचते हुए 2 किलोमीटर दौड़ते उछलते कूदते, अब बालकवत स्वभाव था, उछलते कूदते, खूब मोटा शरीर था, वहां से दौड़ते हुए आए। महाराज जी छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। अच्छा, उन्हीं के जीवन की घटना है। महाराज जी से फक्कड़ थे, शिवोहम का जप करते रहते थे। वृंदावन में आए महाराज जी के संन्यास के बाद, कि अब क्या करें? तो कहे जाओ बद्रीनाथ हुआ। तो एक लुटिया रखते थे वो मिट्टी की, चुनार की बनी हुई, वो लेके जा रहे थे, भिक्षा उसी में मांगते थे, और टूट गई टकरा के, काफी दूर जाने के बाद, जबलपुर के आसपास आने के बाद टूट गई वो। तो फिर वहां से लौट के फिर 200 किलोमीटर गए पैदल, और फिर लुटिया लेके गए अपनी। अच्छा, लौट के आए वृंदावन 6 महीने साल भर बाद। महर्षि ने कहा कि कहां से हुआ है? तो कहे बद्रीनाथ आप बोले थे, बद्रीनाथ हुआ है। तो कहे गंगा स्नान किया? तो वो तो आपने कहा नहीं था। बद्रीनाथ दर्शन किया, तो कहा वो तो आपने कहा नहीं था, तो किए क्या, तो कहे आपने कहा था बद्रीनाथ जाओ, हुआ हम गए हुआ है, तो कहे क्या देखा क्या फिर, तो कहा पत्थर पानी पत्थर पानी, न उनको गंगा में गंगा की दृष्टि, न हिमालय में हिमालय की दृष्टि, न बद्रीनाथ में, ये सबसे निष्ठा की बात जब करते हैं तो महर्षि वहां की निष्ठा की परिभाषा देते हैं कि जहां से फिर आवागमन न हो, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, तो अब फिर उसके बाद चांचल्य राहित्य की बात महर्षि ने की स्वामी जी ने, तो ये चंचलता मिट जाए ये हमारी निष्ठा। तो और हमारे न्यासी लोग यहां बैठे हैं, प्रन्यासी शब्द का उच्चारण स्वामी श्री ने किया, तो अभी आप प्रन्यासी हैं, खाली एक सम्यक लगना है उसमें। परम पूज्य महाराज श्री से महामंडलेश्वर जी महाराज जो अध्यक्ष पद पे आज के समारोह पे को सुशोभित कर रहे हैं समारोह में, महाराज श्री के दो तीन ग्रंथ रिप्रिंट हुए हैं, पुनर्प्रकाशित हैं, एक तो कपिलोपदेश और पूज्य श्री का भागवत भी यहां चल रहा है, तो भागवत से संबंधित दोनों ग्रंथ महाराज जी के करकमलों में आप अवलोकन के लिए यहां पे प्रस्तुत हैं, तो और एक श्री कृष्ण लीला रहस्य, तो छोटी छोटी भागवत की लीलाओं के रहस्य क्या है आध्यात्मिक पक्ष से, इसको उभारा है महाराज श्री ने उस ग्रंथ में। और एक ग्रंथ इस अवसर पे अवसर विशेष पे आना था विष्णु पुराण करके, तो उसमें कुछ संपादकीय कार्य किसी को दिया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वो छप के आने लायक नहीं रह पाया, तो तैयारी तो पूरी थी, वो आ जाएगा एक महीने के अंदर आ जाएगा, उसके लिए सब तैयार है, वो भी आज आवरण देख लेंगे, आज उतना ही है, लोकार्पण करेंगे महर्षि। तो अब कुछ महर्षि महामंडलेश्वर जी से हम अनुरोध करते हैं कि अपना अध्यक्ष उद्बोधन और ये पुस्तकों का लोकार्पण करें। ललित भाई पुस्तकें लेके और लाइब्रेरी में प्रेमपुरी लाइब्रेरी में और पंडित जी के यहां भिजवाने की व्यवस्था दिखा दीजिए।
श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय इस तीसरे माले में हमेशा जिनकी उपस्थिति का हमें एहसास होता है, प्रेमपुरी जी महाराज स्वनाम धन्य, पूज्य श्री जिनकी संन्यास जयंती आज हम मनाने जा रहे हैं, ऐसे महाराज श्री जी हमारे परम प्रेमास्पद स्वामी हरिहरानंद सागर जी महाराज, योगानंद जी, परम प्रेमास्पद सोमदत्त जी, भक्तिमती देवियों तथा सज्जनों, हम पहली बात शिकायत से शुरू करते हैं, प्रशंसा सभी करते हैं, शिकायत कोई नहीं करता। सबसे बड़ी शिकायत यह है जब हरिभाई होते थे इसलिए बार बार बरबस मन उस तरफ चला जाता है, महाराज जी की जयंती है, कम से कम 1000 कार्ड तो प्रेमपुरी को छपाना चाहिए, इतना दरिद्री तो प्रेमपुरी है नहीं, जितने उनके भक्त हैं सब जगह कार्ड पहुंचने चाहिए थे। हमने देखा जब हरिभाई थे चिंतन माला होती थी, कोई कार्यक्रम होता था, आप लोग सब साक्षी हो, ऑफिस में स्वयं हरिभाई बैठता था, उसके बगल में बाबू भाई बैठता था, स्वयं कार्ड भरते थे ऑफिस में और कार्ड जाते थे। अब सब तुम मोबाइल वाले हो गए, मोबाइल में सब नालायक लोग रहते हैं, मैं तो कभी मैसेज देखता भी नहीं हूं कौन है, क्योंकि अच्छे मैसेज बहुत कम आते हैं, बुरे बहुत ज्यादा आते हैं। एक कार्ड भेजने में क्या जाता है? जितने उनके भक्त हैं, जितने उनको मानने वाले हैं, सबका एड्रेस आपके पास में, कम से कम भेजो तो सही, ये काम तो करो। चलो अब पूज्य श्री के बारे में क्या कहना है, हम तो एक बात कहते हैं, ये ममत्वेताम वाणी गुण कथन पुण्येन भवता, ऐसे महापुरुषों के बारे में कुछ कह करके हम केवल अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक जो खासियत है, उनकी जो विशेषता है, अभी मैं बैठे बैठे उनकी पुस्तक देख रहा था, तो श्री कृष्ण लीला का जो रहस्य है उसमें देखा मैंने, उन्होंने एक श्लोक वैराग्य शतक का ले रखा है, सेवा धर्म अत्यंत गहनो योगी नाम अपि अगम्य, कहीं और कहा है। अखंडानंद जी को देख के आपको एक मधुमक्खी की याद आती है जो हजारों हजारों फूलों पर बैठती है और उन फूलों से शहद निकाल के ले आती है, लेकिन उन फूलों को एहसास नहीं होता कि उनसे किसी ने कुछ चुरा लिया। वहां से कुछ निकल गया और वो जो शहद होता है वो महान औषधि का काम करता है, लेकिन उस शहद को निर्माण करने की सामर्थ्य हमारी में नहीं है। हम तो फूल भी तोड़ते हैं तो इतनी बेदर्दी से तोड़ते हैं कि तुम्हें पेड़ की बददुआओं के सिवाय कुछ और मिलता ही नहीं है, और मधुमक्खी वहां से पराग निकाल के कितना सुंदर शहद बनाए। स्वामी जी की पुस्तकों में देखो तो शहद है जो एक सामान्य व्यक्ति निकाल नहीं सकता है। एक महापुरुष रात दिन मेहनत करता है, शास्त्रमय उनका जीवन है। जो स्वामी हरिहरानंद जी महाराज बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उसके महात्म्य में, जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, वो पद्म पुराण का महात्म्य है। वहां पे लिखा है, स्वकीयं भवेत यत् तेज तच्च भागवते अदधात् इरोधाय प्रविष्टोयम्। भगवान श्रीकृष्ण का जो स्वयं का तेज था, स्वकीयं भवेत यत् तेज तच्च भागवते अदधात्, श्री कृष्ण ने वह तेज भागवत में डाल दिया। हमने कभी आपके सामने उल्लेख किया, श्री कृष्ण को हुए 5000 वर्ष हो गए और श्री कृष्ण के समकालीन दो महत्वपूर्ण कृतियां हुई उस काल में, एक स्वर्ग से सुंदर द्वारिका और एक वेदों का सार गीता। ये मैं नहीं कहता, ये आचार्य शंकर कह रहे हैं, वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम अत्यंत दुर्विज्ञेयम्, संपूर्ण वेदों का सार गीता। द्वारिका के आज अवशेष ढूंढे जाते हैं, मिलते नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है शायद कृष्ण की द्वारिका यही है, लेकिन भगवद गीता द्वापर में अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने में जितनी समर्थ थी उतनी समर्थ आज भी है। आज भी कृष्ण की लोकप्रियता उतनी है। तो कृष्ण को द्वारिका ने लोकप्रिय नहीं बनाया, कृष्ण को लोकप्रिय बनाया गीता ने, साहित्य ने। इसलिए मैं साहित्य ट्रस्ट को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो महाराज श्री के द्वारा जो साहित्य है वो साहित्य को जनमानस तक पहुंचाने का एक अथक प्रयास करते हैं। महाराज का व्यक्तित्व एक अनुभवों से भरा हुआ व्यक्तित्व था। चित्सुकाचार्य लिखते हैं, अनुभूति स्वयं प्रकाश अनुभूतित्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घटा। अनुभूति स्वयं प्रकाश होती है। महाराज जी के बारे में उल्लेख है, मैं महाराज जी को सबसे पहले 1977 में मिला था। मैं मथुरा में ठहरा था उस समय, गुरु शरणानंद जी के आश्रम में। उस समय दूसरा महात्मा हमारे तरफ, महाराज श्री प्रश्नोत्तरी किया करते थे। इतना सहज व्यक्तित्व तो उसी का हो सकता है जिसने अपने अंदर के हीरे को पा लिया हो। कभी आपने देखा स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कपड़े कैसे होते थे? हमने लास्ट में देखा यहां 86-87 में हरिभाई ने उनके नाम से कुछ यज्ञ करवाया था, तो ऐसे तकलीफ थी उनको, एक कपड़ा इधर लटका है ऐसा, आधा इधर लटका है, और बनियान ऐसी, वो वाली बनियान, इतनी बनियान पहने हुए। बाहर का वैभव उसी व्यक्ति को आकर्षित करता है जो अंदर से खोखला होता है। जिस व्यक्ति को अपने अंदर के वैभव का पता होता है उस व्यक्ति के लिए बाहर का वैभव का कोई महत्व नहीं है। महिमन में लिखा है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। इतनी कीमती चीज कोई अंदर मिल गई हो और बाहर कोई उस व्यक्ति को पत्थर का प्रलोभन देता हो, वो व्यक्ति पत्थरों की तरफ नहीं देखता, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की दृष्टि कहीं अंदर के हीरे पे है। बाहर की उपेक्षा करना उसका तात्पर्य नहीं। ऐसे महापुरुष कभी किसी की उपेक्षा कर ही नहीं सकते, वो तो अंदर किसी ऐसे तत्व में रमे हैं, बाहर उपेक्षा मालूम पड़ती है। जिसके जीवन में अपेक्षा नहीं है उसे उपेक्षा कैसे किसी की हो सकती है? तो बहुत सारे लोग बैठे थे, कोई आदमी आया, उसने कुछ प्रश्न किया महाराज जी से। बहुत लोग बैठे थे, उसने प्रश्न ये किया कि महाराज जी मैं आज मथुरा और वृंदावन पूरा घूम के आया और कल मुझे जाना है। मैंने एक जगह ऐसा देखा कि श्री कृष्ण जो है राधा जी के पांव दबा रहे हैं। ये उचित है कि अनुचित है? क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद वेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महाराज जी ने इतना सुंदर जवाब दिया। महाराज जी ने कहा, भाई बात ऐसी है, ये सवाल जिस किसी ने किया है वो कुंवारा आदमी है, और वो सही में, उसको बोला खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया, अब वो सही में कुंवारा था। अब उसने बोला, महाराज जी बहुत बड़े ज्योतिष हैं क्या? लगता है बहुत बड़ा ज्योतिष, कैसे पता है? महाराज जी ने कहा, देख ऐसा है, यदि तेरी शादी हो गई होती ना तो तू पूछता नहीं है उचित है कि अनुचित है, ये तेरे को अपने आप ही पता लग जाता, क्योंकि अनुभूति स्वयं प्रकाश है। अनुभूति जो होती है वो कैसी होती है? स्वयं प्रकाश। अनुभूति पर प्रकाश के नहीं होती और स्वयं प्रकाश होती है। इसलिए उनके व्याख्यान जब आप पढ़िए कभी, उनमें अनुभव है, उनमें स्तोती बातें नहीं है। और अनुभूति जो होती है वो स्वयं प्रकाश होती है, ऐसा चित्सुखाचार्य ने लिखा है। और अनुभूति अकाट्य होती है, उसको काटने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अनुभूति वस्तु तंत्र है। मैंने कुछ दिन पहले यहीं पे दृष्टांत दिया था। सबसे पहले पश्चिम में गैलीलियो ने यह कहा कि पृथ्वी घूमती है, चर्च में टहलका मच गया इस बात को लेकर, परेशानी हो गई। फिर कोई आदमी, अच्छा आदमी था, वो गैलीलियो को जानता था कि आदमी बड़ा बुद्धिमान है, समझदार है, और पादरी तो जानते हो कैसे होते हैं। उसने कहा, यार तू लिख के दे दे, नहीं तो ये तेरे को फांसी की सजा लगा देंगे। उसने पादरी से एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा, यदि मैं लिख के भी दे दूं तो क्या पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा क्या? इसको बोलते हैं क्या, वस्तु तंत्र। वो व्यक्ति के अधीन नहीं है। आपकी आंखें कहती हैं मैंने लाल कपड़े पहने हैं, अब आप लाख अपने मन को समझाओ, ज्ञान बदलने के लिए तैयार नहीं है। कैसे बदलेगा ज्ञान? इसलिए अनुभूति जो होती है वो स्वयं प्रकाश होती है। तो महाराज जी का जो हमने साहित्य देखा है, मैं बहुत टाइम नहीं है, यदि उनके जीवन दर्शन पे कभी व्याख्यान रखा जाए तब बोलने का मौका मिले तो घंटों बोला जा सकता है। महाराज जी का जब आप ब्रह्मसूत्र देखिए, सोच सकता है कोई व्यक्ति, जैसे भागवत की कथा होती है उसी प्रकार से ब्रह्मसूत्र का व्यक्ति निर्वचन करता है। मांडुक्य आप पढ़िए, मांडुक्य को जिस गहराई से उन्होंने छुआ है, और गहराई से तो हर कोई छूता है, लेकिन उस गहराई को जितनी सरलता से छुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय अंगम हो जाए, इतनी सरलता से इतनी गहराई को नहीं छुआ जा सकता। ये वही व्यक्ति छू सकता है जिस व्यक्ति ने पाया है उसको। जिसने पाया नहीं वो कभी छू नहीं सकता। पर आप स्वयं एक अनुभव करें, अतिशयोक्ति नहीं करता हूं मैं कभी भी, बोलने में मैं हमेशा ख्याल रखता हूं इस बात का। उस युग के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति मां आनंदमयी, जिनके चरणों में जाकर के स्वयं इंदिरा गांधी बैठती थी, शायद सोमदत्ती जी नहीं जानते होंगे, स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, महाराज जी के साथ काफी करीब रह चुके हैं, अभी उनकी तबीयत खराब है, स्वामी हरिहरानंद जी जानते हैं उनको, 92 वर्ष की उम्र है। एक बार आनंदमयी मां के यहां हरिद्वार में कैलाश आश्रम का शताब्दी समारोह मनाना था, तो इंदिरा जी को आमंत्रण देने के लिए गए वहां। आनंदमयी मां के आश्रम में इंदिरा जी उस दिन आ रही थी, दैव योग से मुझे जाने का मौका मिला उनके साथ। मैंने देखा स्वामी परमेश्वरन जी महाराज को कमरे में बुलाया उन्होंने, कुछ भी थी वो बहुत शिष्ट लेडी थी। महाराज जी गए तो उसने अपने सिर पे ऐसा पल्लू निकाल लिया। महाराज जी बाहर निकल के मेरे को बोले, देखो कैसे। माता जी के सामने बैठ के उन्होंने कुछ ऐसे ही लिया, न कोई डॉक्टरी जांच, न कुछ, इसको श्रद्धा बोलते हैं। ऐसी मां आनंदमयी, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत श्रवण किया जाए। आज भागवत दर्शन के नाम से जो प्रख्यात ग्रंथ है, सोमदत्त जी जानते हैं, वो मां आनंदमयी को ही महाराज श्री के द्वारा सुनाया गया। हम लोग ऐसे महापुरुषों का महत्व तो इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम उनके साहित्य से अवगत नहीं हैं, और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। यदि हम ये प्रयास करते हैं, ये साहित्य ऐसा साहित्य है, मैंने जैसा आपको कहा द्वारिका शायद कभी मिलेगी नहीं, और गीता के कितने एडिशन हो चुके हैं, कितनी बार गीता छप चुकी है, साहित्य से व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और मैं तो समझता हूं गीता कृष्ण को समझने में जितनी सहयोगी है, पूज्य श्री स्वनाम धन्य उनका जो साहित्य है, आप भागवत दर्शन की भूमिका पढ़िए थोड़ा सा। जब आप भागवत दर्शन की भूमिका पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कैसे व्यक्ति रहे होंगे वो। उसमें एक एक चीज जो उन्होंने उठाई है, मैं एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं पुणे में था, मैंने पूरी भागवत दर्शन को मेरे को देखने का मौका मिला। एक बार पढ़ा तो फिर मेरे कुछ समझ में नहीं आया। जब पढ़ रहा था तो ऐसा लगा सब कुछ समझ में आ रहा है। सारा साहित्य, सारा खजाना, कोई सिद्धांत तो छोड़ा नहीं उन्होंने। जब कभी श्रीधर स्वामी को पकड़ते हैं तो श्रीधर स्वामी का दिल आपके सामने खोल देते हैं। किसी आचार्य के प्रति उनके मन में दुराग्रह नहीं है। जीवन के सारे दुराग्रह तब समाप्त हो जाते हैं जब आप अधिष्ठान को समझ जाते हैं। रस्सी में सांप है, कोई बोलता है भू छिद्र है, कोई बोलता है पानी की लकीर है। ये तीन झगड़े तभी तक हैं जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कभी मैंने उनका एक खासियत देखी उनकी, सब आचार्यों की जयंती उनके यहां मनाते हैं। उसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि वो व्यक्तित्व तो ऐसा है जो अधिष्ठान को समझता है बस। इसलिए जो अध्यस्त हैं वो कोई भी अधिष्ठान का विरोधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक अध्यस्त व्यक्ति की सत्ता अधिष्ठान पे ही टिकी हुई है। इसलिए उस सत्य को उपलब्ध जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में बार बार हमारा कोटि कोटि वंदन है, और आप लोगों से आग्रह है इन साहित्य को खूब प्रकाशन तो करते हैं सोमदत्त जी, भगवान इनकी लंबी आयु करें और जल्दी सन्यासी न बनाए, जैसा गिरीश भाई बोल रहा था, स्वयं तो बनता नहीं है, इनको बनाने दूसरे को बनाने की मुझे पढ़ाओ। लेकिन ये साहित्य की सेवा करें बस, और ये साहित्य जनमानस तक पहुंचाया जाए, ऐसी हमारी इनसे प्रार्थना है और आशीर्वाद है कि ये इस काम को बहुत सरलता से सहजता से करें। अब जो है समय हुआ, आभार व्यक्त करेंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बहुत ही आनंदमयी माँ के जब स्मरण आया तो उसमें दो बात महाराज जी बताऊं कि वो माँ महाराज श्री को बाबा बोलती थी और हाथ जोड़ के बाबा बाबा ऐसा, कि आप शुरू करो कथा, और महाराज जी हाथ जोड़ के माँ 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 तीन बार बोल के तब फिर कथा आरंभ करते, तो वो हमको अभी तक दृश्य याद है। और यज्ञोपवीत भी माँ महाराज जी के सामने और माँ के सामने हमारा वहां भदेनी में हुआ काशी में। माँ से कोई प्रश्न करता था नास्तिकता का या कुतर्क करता था, तो माँ उसका विरोध नहीं करती थी कि ऐसा नहीं ऐसा है। वो कहती थी बेटा तू जहां है अभी वहां से वे ऐसा ही दिखता है। ये एक वाक्य उनका ब्रह्म वाक्य था, वो बोल के निकल जाती थी, उसे उलझती नहीं थी उस व्यक्ति से। कहती थी तू जहां भी बैठा है तेरे चित्त की स्थिति जहां है वहां से ये ऐसा ही दिखता है, बस इतने बोलती थी। और हरी हरी कथा कथा बाकी सब व्यथा व्यथा वृथा व्यथा, दोनों शब्द का प्रयोग है वहां। हरी कथा कथा बाकी सब वृथा व्यथा, ये सुंदरकांड में भी है। चलो आज के संन्यास जयंती की जय हो। हमारे आभार ज्ञापन गिरीश भाई ड्रेसवाला करेंगे। नारायण 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 नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।
हरिः ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन, श्री संतों के श्री चरणों में वंदन। आभार नहीं आशीर्वाद ही लेंगे आज के पुण्यत अवसर पर। पूज्य महाराज जी ने एक फरियाद की, महाराज जी जिंदगी में ऐसी है कि किसी को याद करना है तो कुछ फरियादें ऐसी रखनी चाहिए कि जिसको उनसे फरी फरी याद, यानी हमारे गुजराती में बोलते हैं बार बार याद उनकी आए। तो पूज्य पिताश्री का भी स्मरण हुआ और अभी जो फरियाद हुई है उसको हम ध्यान में भी रखेंगे। सोमदत्त जी, मुझे तो लगता है कि आपको छोटे महाराज जी करके बुलाना चाहिए इतना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है कि बहुत ही अच्छा लगता है। पूज्य हरिहरन जी महाराज को भी सुन के बहुत ही आनंद आया कि वेद से संन्यास की क्या अनुभूति हमें कर सकते हैं, और योगानंद जी महाराज से भी हमने यह प्राप्त किया। सभी संतों को वंदन करते हुए अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।